Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो पंचीकरण करते हैं हिरण्यगर्भ और फिर स्थूल भूत रूपी ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और उस ब्रह्मांड को फोड़ते हैं तो सूर्य और चंद्रमा रूपी एक मिथुन प्रकट होता है, ऐसा यह सब वर्णन है वेद में। और वो पहले से ही ये कर्तव्य को समझ चुके हुए हैं, वो याद करके वैसा ही किया। ये यहां पर कहा कि स मिथुनम उत्पादयते, तो सूर्य और चंद्रमा को ही मिथुन कहा गया। वो मिथुन, लेकिन यहां सूर्य और चंद्र शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग किया है रई और प्राण शब्द का, कि रई च प्राणं च। वो मिथुन कौन है? रई और प्राण। संस्कृत में रई शब्द धन का वाचक है, रई यानी धन, और धन है तो सारे भोज्य पदार्थ आप प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए धन के वाचक रई शब्द से समझना भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ यानी अन्न, तो रई शब्द का अर्थ निकलेगा अन्न, और अन्न का संबंध होता है, अन्न के साथ संबंध होता है चंद्रमा का। तो चंद्र के किरणों के माध्यम से जीवन उपयोगी रस, गेहूं चावल आदि जो भी किसान खेत में फसल बोता है, तो फसल के समय चंद्र के किरणें फसल पर पड़ती हैं तो जीवन उपयोगी रस गेहूं चावल आदि धान्य में अन्न में आ जाता है। तो इस प्रकार अन्न के साथ चंद्रमा के किरणों का संबंध होने से चंद्रमा का भी संबंध हो गया ना, इसलिए रई शब्द से अन्न और चंद्र इन दोनों को लिया गया। तो रई का अर्थ निकला, सीधा वाच्यार्थ तो धन, लक्षार्थ अन्न, और अन्न के साथ चंद्रमा का भी संबंध होने से चंद्रमा भी एक हुआ। रई शब्द का अर्थ चंद्रमा, मिथुन होता है जोड़ी, जोड़ी में दो होते हैं, तो एक हुआ चंद्रमा और दूसरा हुआ प्राण। तो प्राण का भी सूर्य के साथ संबंध है, अग्नि के साथ संबंध है। प्राण का अग्नि के साथ संबंध बताने वाला गीता में श्लोक आता है 15वें अध्याय में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो प्राणापान से युक्त होकर के, यानी प्राण अपान रूप जो प्राण के वृत्ति हैं, उनके साथ वैश्वानर अग्नि का संबंध बताया है ना, और अग्नि के साथ संबंध श्रुति ने सूर्य का बताया है। उद्यंतम वाव आदित्यम अनु अग्नि अनु समारोहती, ऐसा एक वेद वचन आता है कि जैसे ही सूर्योदय हो जाए तो फिर उष्णता बढ़ जाती है दिन में, और सूर्यास्त हो जाए तो सूर्योदय के पहले तक ठंडा रहता है, और उष्ण ये स्वरूप है अग्नि का, इसलिए औष्ण्य स्वरूप वान अग्नि का सूर्य के साथ संबंध है। सूर्य उदय से अग्नि का यानी औष्ण्य का बढ़ना यह ज्ञापन करता है कि अग्नि और सूर्य आपस में संबंधित है। इसलिए प्राण का संबंध हुआ अग्नि के साथ और अग्नि का संबंध हुआ सूर्य के साथ। तो प्राण शब्द से सूर्य और अत्ता, इन दोनों को लेना। अग्नि है अत्ता, इसलिए प्राण अत्ता अग्नि ये समानार्थक शब्द माने जाएंगे। यहां पर प्रश्न उपनिषद में प्रथम प्रश्न का उत्तर देते समय जो रई शब्द का प्रयोग हुआ उससे समझना अन्न चंद्रमा, और प्राण से समझना अत्ता, अत्ता यानी खाने वाला, और अग्नि आदित्य, ये प्राण पर्यायवाचक शब्द होंगे। अत्ता आदित्य अग्नि प्राण, तो ये रई और प्राण नामक मिथुन को सबसे पहले प्रजापति ने उत्पन्न किया। अभी सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है, जैसे ईश्वर ने संकल्प किया पांचों भूत तथा हिरण्यगर्भ को बना दिया, फिर ईश्वर अपने स्वरूप में स्थित हो गए। आगे कहा कि तुम कर आगे का निर्माण करना, फिर पंचीकरण पूर्वक ब्रह्मांड को बना करके सूर्य चंद्रमा रूपी मिथुन को हिरण्यगर्भ ने सबसे पहले बनाया। प्रश्न तो है कि प्रजा की उत्पत्ति किससे होती है, और प्रजा का अर्थ है ये 84 लाख प्रकार के कार्यकरण संघात, मनुष्यादि प्रजा। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अभी चंद्रमा और सूर्य रूप मिथुन की उत्पत्ति बताई गई है। इस मिथुन को उत्पन्न करने का उद्देश्य प्रजापति का क्या रहा होगा, तो कहते हैं ये उद्देश्य रहा कि ये तो मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति। ये तो ये द्विवचन है का अर्थ है ये दोनों, ये दोनों यानी कौन, रई प्राण यानी सूर्य चंद्रमा, ये दोनों जो अन्न अत्ता रूप है, यह मेरी अनेकों प्रकार की प्रजा का निर्माण करेंगे। इस उद्देश्य से हिरण्यगर्भ ने चंद्रमा और सूर्य रूप मिथुन को बनाया, जैसे परमेश्वर ने हिरण्यगर्भ को बनाया कि मेरा जो संकल्प है मेरा पुत्र हिरण्यगर्भ इसे साकार करेगा, इस उद्देश्य से हिरण्यगर्भ को बनाया। ऐसे हिरण्यगर्भ ने बना दिया, ईश्वर ने एक पुत्र उत्पन्न किया, तो ये दो हिरण्यगर्भ ने बनाया, एक मिथुन अन्न अत्ता सूर्य चंद्रमा, और इनका भी वही उद्देश्य रहा कि ये मुझे अनेकों प्रकार की प्रजा का निर्माण करना है, उसमें ये महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस दृष्टि से इस उद्देश्य से इनका निर्माण हिरण्यगर्भ ने किया, प्रजापति ने किया, ये वर्णन चौथे मंत्र में है। यद्यपि ये बताना है कि हिरण्यगर्भ ही बनाता है शरीरों को, प्रजापति ये जो शरीर है आपके, इसका निर्माता हिरण्यगर्भ है, प्रजापति है, ये दिखाना है। हाँ, हिरण्यगर्भ का ब्रह्मा जी भी नाम है, तो ब्रह्मा जी ही बनाते हैं, हिरण्यगर्भ ही बनाते हैं, लेकिन सीधे सीधे हिरण्यगर्भ ये मानव शरीर या गौ का शरीर या ऐसा ये सब चौरा स्थूल शरीर नहीं बनाते, वो क्रम से वो स्वयं पहले हिरण्यगर्भ चंद्रमा और सूर्य का रूप धारण करते हैं, अन्न अत्ता बन जाते हैं। और उनका उद्देश्य है कि ये अन्न और अत्ता मेरी अनेकों प्रकार की प्रजा का निर्माण करेंगे। कैसी ये अन्न और अत्ता से यानी सूर्य चंद्रमा से अनेकों प्रकार की प्रजा का निर्माण होगा, तो कहते हैं ये सूर्य और चंद्रमा ही पहले क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा नहीं होगा तो संवत्सर नहीं होता, काल नहीं होता। ये संवत्सरात्मक जो काल है ये सूर्य के उदय अस्त को लेकर के चंद्रमा के कलाओं को लेकर के होता है। तिथि आदि जो बनती है ना, दिन रात सूर्य के उदय अस्त को लेकर के होते हैं, दिन रात से पक्ष बनते हैं, पक्ष से फिर महीना बनता है और महीने से संवत्सर बनता है। और ये संवत्सर आदि रूप काल होगा तभी क्या हो जाता है, ये अन्न तथा अत्ता का निर्माण होता, अन्न बन जाता है। और अन्न से फिर प्रजा का निर्माण होता है। माता पिता के द्वारा भक्षित जो अन्न है उनके पेट में जाकर के पाचन क्रिया के माध्यम से सप्तम धातु का रूप धारण करके फिर प्रजा का रूप धारण करता है। कौन ये अन्न ही, और इसके लिए जरूरी है काल का निर्माण। इसलिए ये कहा जाता है काल एक कारण है सारे जगत का। तो काल इनसे बनता है, सूर्य चंद्रमा से। यदि चंद्रमा न हो तो तिथियां निष्पन्न नहीं हुए। चंद्रमा के शुक्ल पक्ष में ओ चंद्र की कलाएं बढ़ती हैं तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया तृतीया आदि तिथियों का वो होता है पूर्णिमा तक। ऐसे कृष्ण पक्ष में तो तिथि आदि का निर्माण द्वारा एक प्रकार से संवत्सर का निर्माण हो जाता है चंद्रमा के द्वारा, तथा उदय अस्त और दिन रात आदि के द्वारा सूर्य से। इसलिए हिरण्यगर्भ ने सोचा कि मैं पहले काल का निर्वर्तक चंद्र और सूर्य का रूप धारण करूं। तो हिरण्यगर्भ ही चंद्र और सूर्य के रूप में प्रकट हुआ। ये आगे बताया जा रहा है पंचम मंत्र में। इसलिए पंचम मंत्र में सबसे पहले तो श्रुति बता रही है जो मिथुन बताया गया था ना, रई और प्राण रूप। इसमें से रई कौन है, प्राण कौन है, इसे श्रुति स्वयं बता रही है। आदित्यो हवै प्राणो रईरेव चंद्रमा रईर्वा एतत् सर्वं यन् मूर्तंचा मूर्तंच तस्मात् मूर्तिरेव रईहि। तो ये कहते हैं कि जो मिथुन उत्पन्न किया ये बताया गया पूर्व में, उस मिथुन में जो प्राण पद प्रयोग हुआ, प्राण शब्द का प्रयोग हुआ ना, वह प्राण पदार्थ कौन है, तो कहते आदित्यो वही प्राण, आदित्य ने सूर्य, यही मिथुन अंतपाती प्राण शब्द का अर्थ है सूर्य। और रई कौन है, तो कहते रई रेव चंद्रमा, तो रई है चंद्रमा यानी अन्न। तो इस प्रकार अन्न और अत्ता ये एक मिथुन बना। इन मिथुन में से ये बताना है कि प्रजापति का कार्य, हिरण्यगर्भ का कार्य ये मिथुन होने के कारण प्रजापति मिथुन का कार्य का वास्तविक स्वरूप माना जाता है कारण को, कारण ही मिट्टी ही घड़े का रूप धारण करती है, उपादान कारण उपादेय के रूप में भासता है, ऐसे आदित्य और चंद्रमा रूप मिथुन को ये हिरण्यगर्भ ने बनाया तो हिरण्यगर्भ आदित्य और चंद्रमा का उपादान कारण है और ये हिरण्यगर्भ है सर्वात्मा। सर्वात्मा कहते हैं सर्वरूप। तो हिरण्यगर्भ में प्रजापति में एक गुण है सर्वात्मत्व गुण, सर्वरूपता गुण। मूल में तो अकेला ही था ना, ईश्वर के बाद ईश्वर ने तो पंचभूतों को हिरण्यगर्भ को बना करके एक प्रकार से अपने स्वरूप में चले गए, छिप गए वो। अभी कौन है संसार की दृष्टि से देखेंगे तो ईश्वर छिप जाने के बाद हिरण्यगर्भ अकेला है और वही सर्वात्मा है और उसी से उसी ने फिर चंद्रमा और सूर्य का रूप धारण कर लिया का अर्थ है वो सर्वात्मा प्रजापति ही सूर्य बन गया, चंद्रमा बन गया। अब ये हिरण्यगर्भ में ही अंतिम कार्य की भी कारणता दिखाने के लिए ये बताया जा रहा है कि ये रूप हिरण्यगर्भ ने ही धारण किया प्रजापति रूपता रई में भी और चंद्रमा में भी। दिखाने के लिए पहले रई यानी चंद्रमा की सर्वरूपता दिखाते हैं कि रई वा एतत् सर्वम्। कहते हम इस समय जो स्थिति काल में देख रहे हैं वो सब का सब रई यानी चंद्रमा ही है, अन्न ही है। मान लेते हैं ये जो मेढक है इसको मान लेता है सर्प अपना अन्न, लेकिन मोर सर्प को अपना अन्न देखता है तो सर्प मेढक के दृष्टि में तो अत्ता है लेकिन मोर की दृष्टि में अन्न है और मोर का भी भक्षक कोई न कोई होता है तो उसके दृष्टि में मोर भी अन्न है। तो जीवो जीवस्य जीवनम के अनुसार एक जीव दूसरे जीव का अन्न है, इसलिए परस्पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये अत्ता ही होगा, किसी का अन्न नहीं होगा। तो ये कहा जा रहा है उस दृष्टि को लेकर के कि रई यानी अन्न ही ये सब कुछ है, जो कुछ दिख रहा है वो सब का सब रई यानी अन्न ही है। कहा है कौन है वो सब कुछ, तो दो विभाग में विभक्त है, एक मूर्त यानी साकार रूप और अमूर्त है निराकार रूप। निराकार है प्राण और साकार है ये जो गेहूं आदि ये साकार है। तो जो मूर्त घटादि हैं फसल आदि हैं वो सब भी ब्रीहवादी मूर्त शब्दित अन्न ही है और अमूर्त शब्दित जो वायवादी है ये सब अन्न ही अन्न है, क्योंकि ये वायु भी किसी न किसी का भक्ष होता है, किसी न किसी में विलीन हो जाता है, प्राण का भी विलय हो जाता है। किसमें विलय हो जाता है प्राण का, तो प्राण उत्पन्न हुआ है ना, तो उत्पन्न हुआ है तो वो भी जिनसे उत्पन्न हुआ है, तो किससे उत्पन्न हुआ है, केवल आकाश से नहीं, वो उत्पन्न हुआ है अपंचकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित रजोगुण से, तो कार्य अपने कारण में विलीन होता है जब लय का समय आता है तो, और जब उत्पत्ति का समय आता है तो कारण से प्रकट होता है, जिससे प्रकट हुआ उसी में विलय के समय विलीन हो जाता है। नदियां उत्पन्न होती है समुद्र से और विलीन भी हो जाती है समुद्र में, ऐसे अपंचकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित रजोगुण से उत्पन्न हुआ प्राण भी, जिसको अत्ता कहा जा रहा है, उसको भी प्रलय काल में निगल लेते हैं वो रजोगुण अपंचकृत पंचमहाभूतों के, वो भी विलीन हो जाता है, उसको भी ग्रस लेते हैं। और प्राण शब्द से आदित्य को कहा जा रहा है तो आदित्य का भी विलय हो जाता है, उत्पन्न हुआ है तो विलीन होगा। तो इस प्रकार ये जो है अमूर्त शब्दित वायवादी और मूर्त शब्दित ये जो अन्नादि हैं, ये सब के सब रई यानी अन्न ही हैं। तो रई की यहां पर सरूरूपता, रई यानी चंद्रमा की सरूरूपता बताई, किस लिए? प्रजापति रूप दिखाने के लिए। प्रजापति सरूरूप है और चंद्रमा भी सरूरूप है, इसलिए सर्वात्मक होने से इसे भी प्रजापति समझना, चंद्रमा को भी। ये जब आप अन्न भाव की कल्पना करना चाहेंगे, दृष्टि करना चाहेंगे, तब अन्न को मानना है सर्वरूप, प्रजापति रूप। लेकिन जब आपको अन्न को अलग, अत्ता को अलग समझना है, तो उस समय फिर ये कहना कि समझना कि जो मूर्त है वही अन्न है, और मूर्त से अलग जो अमूर्त है वो अत्ता है। इसलिए आगे कहा कि तस्मात् मूर्तिरेव रई, तस्मात् यानी अमूर्त जो अत्ता है उससे भिन्न जो मूर्ति यानी मूर्त रूप है वही रई है, अन्न है, चंद्रमा है, और अमूर्त जो आदित्य है प्राण वो अत्ता है, अलग अलग भी समझना। और जब आपको अन्न को प्रधानता देना है, अन्न में प्रजापति रूपता सिद्ध करनी है, उसकी सर्वरूपता सिद्ध करके, तो उस समय उसे सब अन्न रूप ही देखना, अत्ता भी अन्न है करके किसी न किसी का। तो इस प्रकार ये पंचम मंत्र में बताया गया हिरण्यगर्भ ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए सबसे पहले अन्न और अत्ता रूप एक मिथुन बनाया, इसी से आगे चंद्र और सूर्य रूप मिथुन से बनेगा संवत्सर, फिर संवत्सर से बनेगा आयन उत्तरायण दक्षिणायन, उससे बनेगा मास, मास से बनेंगे पक्ष, पक्ष से बनेगा अहोरात्र यानी दिन रात रूपी समय, उससे बनेगा गृह यवादि रूप अन्न, और गृह यवादि रूप अन्न से खाए हुए बनेंगे जो अन्न रस, सप्तम अन्न रस, और उससे बनेगी प्रजा। तो इस क्रम से बताया जाएगा यहां पर प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए। इसी स्वरूप से प्रजापति मूल में जो था हिरण्यगर्भ वही रूप धारण करता जा रहा है, अभी एक मिथुन रूप बना है, संवत्सर रूप भी वही बनेगा, वही आयन रूप बनेगा, मास रूप बनेगा, दिन रात का भी रूप धारण करेगा हिरण्यगर्भ ही, और वही फिर अन्न का रूप धारण करेगा व्रीही यवादि का, और वही फिर प्रजापति का क्या नाम प्रजा का रूप धारण करके आपके हमारे रूप में दिखेगा। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि आत्मा वही पुत्र रूपे न जायते, तो हम सब के सब उसी प्रजापति की संतान है, वो हमारा मूल पुरुष है, उससे हम निकले हैं, उसी ने हम सबका रूप धारण किया है। लेकिन किस क्रम से किया है वो पद्धति प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए बताई जा रही है। अपरा विद्या का फल संसार है ना, तो अपरा विद्या का अनुष्ठान करने वाला पहले तो मनुष्य था, उसने हिरण्यगर्भ बनने की कामना की और उसके लिए हिरण्यगर्भ की अंग्र उपासना की और हिरण्यगर्भ बना और हिरण्यगर्भ बन करके फिर ये सारा संसार बन गया, संसार का रूप धारण किया। यह अपरा विद्या का फल संसार है, ये वर्णन किया जा रहा है। आगे की चर्चा हम लोग फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।